ओम शांति। आज का विषय है दिव्य गुण संपन्न जीवन। हम सभी जानते हैं कि गुण मनुष्य को मूल्यवान बनाते हैं। गुण ही मानव जीवन की शोभा है, श्रृंगार है। जैसे एक सुगंधित पुष्प होता है, वो स्वतः ही सबका ध्यान आकर्षित करता है, ऐसे ही गुणवान मनुष्य भी सभी को आकर्षित करता है। जो गुणवान होता है उसका जीवन प्रेरणास्पद होता है, वो दूसरों को सुख देने वाला होता है। आज संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट हैं, वो किसी ना किसी गुण के अभाव के कारण ही हैं। और इसीलिए दुनिया में जितने भी दर्शन या धर्म ग्रंथ हैं, उनका लक्ष्य यही है कि मनुष्यों को वो अवगुणों से गुणों की ओर ले जाएं। और जब अति तमो प्रधानता होती है सृष्टि में, तब स्वयं परमात्मा शिव कलयुग के अंत में अवतरित होकर के हमें आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा से सर्वगुण संपन्न और पवित्र बना रहे हैं, जिससे मनुष्य से देवता यानी नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। तो मनुष्य और देवता में यही अंतर है कि देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, इसीलिए पूज्य हैं, मंदिरों में उनकी पूजा होती है। तो ऐसे तो 36 गुणों का गायन है सर्वगुणों में, लेकिन कुछ गुणों जो विशेष गुण हैं, जिसके साथ अन्य गुण स्वतः आ जाते हैं, तो इसमें एक है अंतर्मुखता का गुण। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अंतर्मुखी होता है वो अपने अंतर में स्थित आत्मा में स्थित होता है, और जब हम आत्मा में स्थित होते हैं तो आत्मा के गुणों का स्वतः अनुभव करते हैं, शांति, प्रेम, आनंद, इन गुणों का अनुभव अतींद्रिय सुख का अनुभव कराता है। और क्योंकि मुख पर ही हमारी सब ज्ञान इंद्रियां हैं, तो जो अंतर्मुखी होता है वो स्वराज्य अधिकारी भी होता है। आत्मा मालिक है अपनी कर्मेंद्रियों की, और उसके साथ साथ उसे साक्षी अवस्था का अनुभव करना भी सहज होता है। तो वो सहज ही बाह्य मुक्ता में आकर के अपने समय को व्यर्थ गंवाने से बच जाता है। और दूसरा विशेष गुण है सहनशीलता। आज के वर्तमान समय में सहनशीलता के गुण की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति सहनशील है तो वह अनेक आपदाओं से, दुर्घटनाओं से सहज बच जाता है। आज हम देखते हैं कोई किसी की एक छोटी बात को सहन नहीं कर सकता। किसी ने एक कहा तो दो कहेंगे, दो कहा तो चार कहेंगे। माना ईंट का जवाब पत्थर से देना है या जैसे को तैसा मिलना चाहिए, ऐसी भावना होती है। फिर सोचते हैं कि हम क्यों सहन करें, और खासकर अगर हमने गलती नहीं की है तो हम चुप रहेंगे तो हमारी ही गलती मानी जाएगी, हमें कमजोर समझा जाएगा। या फिर ये भी सोचते हैं कि अगर हमने एक बार सहन कर लिया तो फिर हमेशा के लिए हमारा फायदा उठाएंगे। तो कई बार देखने में आता है कि इसके कारण छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं, विनाशकारी भी हो जाती हैं। ऐसे समाचार हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, देखते हैं न्यूज में। ऐसे एक समाचार था कि एक इंजीनियर थे, उनकी पत्नी मायके जाना चाहती थी और उन्होंने मना किया। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई और बात काफी बढ़ गई। तो जो पत्नी थी उसकी गोद में 8 महीने की बच्ची थी, वो गुस्से में आकर के उन्होंने उसकी वो बच्ची को छीना और उसे उठा के पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो छोटी सी बात वो सहन नहीं हुई तो कहां से कहां मनुष्य पहुंच जाता है, किसी की हत्या तक कर देते हैं। सब जानते हैं कि क्रोध में आकर मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो रोजमर्रा की जिंदगी में शायद हम इतने चरम तक तो नहीं जाते, लेकिन फिर भी बहुत बार हम नहीं सहन कर पाते तो स्थितियां बहुत विकट हो जाती हैं। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने मेरा अपमान कर दिया, मुझसे दुर्व्यवहार कर दिया, किसी ने मेरी ग्लानी कर दी, मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। ये स्थितियां उत्पन्न होती ही रहती हैं। बाबा हमें कहता है निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय हानि लाभ सुख दुख सबको हमें सहन करना है। तो यहाँ हम देखते हैं महान पुरुषों के जीवन में जब भी ऐसा होता रहा तो वो हमेशा रहम दिल रहे, हमेशा क्षमाशील रहे और तभी वो समाज में परिवर्तन ला सके। ब्रह्मा बाबा को भी हमने देखा कि बहुत लोगों ने उनकी ग्लानी की, उनको अपशब्द कहे, यहाँ तक कि उनको मारने के लिए भी आ गए, लेकिन फिर भी बाबा उनके प्रति रहम दिल थे और बाबा ने उनके प्रति क्षमा भाव रखा। तो तमो प्रधान समय है, तमो प्रधान आत्माएं हैं, वो परवश हो जाती हैं विकारों के। ये तीनों कालों की समझ बाबा ने हमें दी है और कर्मों की गति भी समझाई है कि हमारे कर्मों के हिसाब किताब भी हैं कुछ आत्माओं के साथ जिनसे हमें सहन करना पड़ता है। तो यदि हम अभी सहन कर लेते हैं तो और उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं तो हमारा वो कर्ज चुकता हो जाता है। पर कई बार क्या सोचते हैं कितना सहन करेंगे, आखिर सहन करने की भी कोई सीमा होती है। तो बाबा कहते हैं 10 बार सहन किया और 11वीं बार आपने बोल दिया तो भी उसको सहन करना नहीं कहेंगे। सहन हम क्यों कर रहे हैं? सहन हम बाबा की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, कई बार लोग समझते हैं सहन करना माना मरना पड़ता है, कितना हम मरेंगे। तो बाबा ने कहा ये मरना नहीं है लेकिन सभी के दिलों में प्यार से जीना है और बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है। सहन करना माना शहनशाह बनना है। तो उसमें भगवान की दुआएं समाई हुई हैं। सहन वास्तव में शक्ति है, सहन कोई कमजोरी नहीं है। तो सहनशीलता का गुण इतना श्रेष्ठ गुण है। संतुष्टता सभी गुणों का राजा कहलाता है और संतुष्टता के लिए भक्तों ने भी उसे बहुत अपने जीवन में अपनाया। तो कबीरदास जी ने कहा गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो संतुष्टता का धन सबसे बड़ा धन है। तो हमें 4 बातों में संतुष्ट रहना है, स्वयं से, बाप से, बाबा से, भगवान से और परिवार से और ड्रामा से। तो जो संतुष्ट हैं वो निर्दोष और निस्वार्थ दृष्टि वाले होंगे। जब हम निर्दोष और निस्वार्थ हैं, यानी किसी में हम दोष नहीं ढूंढते और स्वार्थ नहीं रखते, तभी हम संतुष्ट रह सकते हैं। तो वो न तो भाग्य विधाता के ऊपर दोष रखेगा कि उसने मेरा भाग्य ऐसे बनाया, ना ही किसी आत्मा पर कि इसका स्वभाव संस्कार ऐसा है इसलिए हम असंतुष्ट हो जाते हैं, और न ड्रामा पर कि ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है, ऐसा क्यों है, और ना प्रकृति पर कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, या अपने शरीर पर कि मेरे शरीर का कर्म भोग या हिसाब किताब ऐसा है। संतुष्टता माना सर्व प्राप्ति संपन्न होने की अनुभूति, जिसे बाबा कहता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। हमारी संतुष्टता का आधार स्थूल और सूक्ष्म सर्व प्राप्ति है और बेहद की प्राप्ति है। बाबा ने हमें अखुट खजानों का मालिक बनाया है, और एक जन्म के लिए नहीं लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए वो प्राप्तियां हैं, जिसके लिए कहा पाना था सो पा लिया, या कहते हैं परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, या जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया तो फिर और क्या चाहिए। तो संसार की जो हद की इच्छाएं हैं वो उसमें समा जाती हैं, उसको हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर बेहद की प्राप्ति है तो हद की आवश्यकताएं स्वतः ही पूरी होती हैं। तो संतुष्ट रहते हैं तो फिर हम प्रसन्न भी रहते हैं। संतुष्टता ही प्रसन्नता का आधार है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है, तो प्रसन्नता उसकी पर्सनालिटी है। वो हर्षित मुक्ता जिसके अंदर है, या जो प्रसन्न चित्त है, वो आकर्षित मूरत होता है। बाबा कहते हैं उनका चेहरा ही सेवा करता है, उनकी प्रसन्नता की वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। तो जैसे देवताओं को प्रसन्न चित्त दिखाते हैं, किसी भी देवता की के मंदिर में जाएंगे तो उसके चेहरे से ही, उनके दर्शन मात्र से ही ऐसा कहेंगे आत्माओं को सुख का अनुभव होता है, क्योंकि चेहरे पर वो एक नेचुरल मुस्कान होती है। तो ऐसे ही अगर हम संतुष्ट हैं तो वो प्रसन्नता हमारे चेहरे पर दिखाई देती है। इसको बाबा कहता है संगम युग है ही खुशियों और मौजों का युग, सदा प्रसन्न रहना, कभी प्रसन्न कभी उदास ऐसे नहीं, लेकिन सदा ही प्रसन्न रहें। फिर नम्रता का गुण महान बनाता है, और जो भी महान आत्माएं हैं उनकी विशेषता होती है कि वो नम्र होते हैं। जो नम्र होता है वो झुकता है, और इसीलिए दूसरे भी उसके आगे झुकते हैं, वो सबको सम्मान देता है। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो वो उसे स्वीकार करता है, वो निमित्त समझते हैं अपने आप को। निमित्त माना करण करावनहार परमात्मा है, हम ट्रस्टी हैं, मैंपन नहीं होता, यानी अहंकार अंश मात्र भी नहीं होता है। उसके लिए कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो नम्र व्यक्ति में ये गुण होता है कि वो फ्लेक्सिबल होता है, जैसा समय जैसी परिस्थिति उस अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो कई बार नम्र व्यक्ति को भी लोग कमजोर समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं कि नम्रता उतना ही सोमान, और जितना हम सोमान में रहते हैं उस अनुसार हम फिर सबको सम्मान भी देते हैं। फिर है धैर्यता का गुण। हम जानते हैं कि संसार में सभी चीजों का एक अपना समय है, तो जिसमें धैर्य होता है उसमें उतावलापन नहीं होता कि मैंने अभी अभी किया और अभी अभी मुझे इसका फल मिलना चाहिए। जैसे हम वर्तमान समय में देखते हैं जो आज की पीढ़ी है, रूप से, हमें इंस्टेंट प्राप्ति चाहिए तुरंत। तो कहा जाता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे सौ खड़ा वे तो आए फल होए। तो समय पर ही सब चीजें होती, हर चीज का वो समय होता है। तो जब धैर्य होता है हमारे अंदर, हिम्मत भी होती है, और जहां हिम्मत है वहां बाबा की हजार गुना मदद हमें मिलती है और हम सफल हो जाते हैं। पवित्रता का गुण ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है, और पवित्रता को बाबा साधारण रीति से नहीं लेकिन उसकी गुह्यता में हमें ले जाते हैं कि केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पवित्रता नहीं है, लेकिन ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्माचारी बनना माना ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला। जैसे ब्रह्मा बाबा ने संकल्प बोल कर्म किए, वैसे ही संकल्प बोल कर्म हमारे हों। फिर बाबा कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी बनना। देवताओं का ये विशेष गुण है, तो कोई विकार का अंश वंश भी ना हो, तब हम उसे संपूर्ण पवित्रता कहेंगे। और उसमें फिर बाबा कहता है इवन स्वप्न में भी किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या या आवेश के वश, यानी कोई भी विकार के वश कर्म ना हो स्वप्न तक भी। और दिनचर्या जो हमको बाबा ने दी है अमृत वेले से रात तक, उसमें कहीं आलस्य अलबेलापन ना हो, व्यर्थ भी ना हो। व्यर्थ भी अपवित्रता है अगर हम बहुत व्यर्थ संकल्पों में मन को ले जाते हैं, और तब पवित्रता सुख शांति की जननी है, ऐसा हम महसूस करते हैं कि सदा ही मन सुखी और शांत स्थिति का अनुभव करता है। और पवित्रता के साथ ही सत्यता का संबंध है। बाबा सत्यम शिवम सुंदरम है, तो बाबा सत्य ज्ञान से सतयुग की स्थापना करते हैं, हमें सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। बाबा को सच्चाई सफाई पसंद है, इसलिए कहते हैं सच्चे दल पर साहब राजी। सच्चे दिल पर साहब राजी माना जितना मन साफ है हमारा, सच्ची दिल है यानी अंदर एक बाहर दूसरा नहीं। आज का जो कलयुग का व्यवहार है वो इस प्रकार का ही होता है, दोहरा व्यक्तित्व होता है मनुष्यों का, कि वो बाहर जो व्यवहार करते हैं वैसे ही वो कोई हमारे लिए अंदर में भावनाएं रखते हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है ना। हो सकता है कि आपके पीठ पीछे वो आपके बारे में बुराई करते हो, तो अगर जैसा हम कहते हैं वैसा ही हम करते नहीं, हमारी कथनी और करनी में अंतर है, तो उसको भी सत्यता नहीं कहेंगे। आपसी संबंधों में भी सच्चाई सफाई हो, बाबा के साथ तो सच्चाई हो ही, कि अगर श्रीमत के विरुद्ध कुछ भी है तो हम तुरंत बाबा को सच्चाई से वो सुना देते हैं। तो फिर कहते हैं सच तो बिठो नच, जो सच्चा है वो भी सदा खुशी में नाचता है और वो निर्भय भी होता है। और सत्यता के साथ साथ सरलता का गुण, जो सरल व्यक्ति होता है वो बहुत सहज होता है, जो भी बातें होती हैं हमारे जीवन में, जो भी समस्याएं होती हैं या परिस्थितियां होती हैं, जो सरल व्यक्ति होगा वो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता है, यानी वो पहाड़ को भी राई बनाता है। जो जटिल व्यक्तित्व वाले होते हैं वो राई को पहाड़ बनाते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, क्यों क्या कैसे में ज्यादा चले जाते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगा पाते। लेकिन जो सरल स्वभाव वाला है वो सहज ही फुल स्टॉप लगा सकता है। सही निर्भयता, निर्भयता का गुण ज्ञानी व्यक्ति की निशानी है, क्योंकि जहां तीनों कालों का हमें ज्ञान है, उत्पत्ति ज्ञान की समझ है परमात्मा के द्वारा, आत्मा परमात्मा का ज्ञान जिसे हम कहेंगे, और स्वयं जो सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान है वो हमारा साथी है, तो हम सहज ही निर्भय हो जाते हैं। अगर व्यक्ति भय में जीता है तो वो जैसे मृत्यु के समान है। आज की जो परिस्थितियां हैं, जिसे हम कहेंगे कि पूरा विश्व जो है वो एक कोरोना के संकट से गुजर रहा है, तो बहुत मनुष्यों के जीवन में उसको लेकर के भय है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई, केवल जीवन का ही प्रश्न नहीं लेकिन अन्य अनेक भी जो भविष्य के लिए भय उत्पन्न हो गए मनुष्य के मन में। तो लेकिन जब हमें ज्ञान की समझ है कि ये परिवर्तन होना ही है, ये समय से मानव को गुजरना ही है, विश्व को गुजरना ही है, तभी वो नई सत्यों की सृष्टि इसमें आएगी, तो फिर हमें उतना भय नहीं रहता है। तो ज्ञान हमें निर्भय बनाता है हम कहेंगे, और जो बाबा से योग की शक्ति है वो हमें निर्भय बनाती है। ऐसे मधुरता का गुण, जो व्यवहार है हमारा, व्यवहार और वाणी वो मधुर है तो हमारे संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। कहते हैं ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उसकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। तो मीठे बोल से हम सबका दिल जीत लेते हैं, और कहते हैं जबान मनुष्य को तख्त पर भी बिठाती है और तख्ते पर भी ले जा सकती है। तो अगर कड़वे वचन मुख से निकलते हैं, जिसको बाबा कहते हैं मुख से पत्थर निकलते हैं, और वो तभी होता है जब हम किसी के प्रति क्रोध की भावना, बदले की भावना या ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं, तभी ऐसे वचन मनुष्य के मुख से निकलते हैं। और नहीं तो जो सभ्य व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, उनकी ये विशेषता होती है कि उनके वाणी और व्यवहार में मधुरता होती है, और मधुरता हमें ईश्वर के समीप भी ले जाती है। बाबा भी हमें मीठे मीठे बच्चे कह करके मीठा बनाते हैं। बाबा से हमने ना, बाबा ही हमें हमें सर्व गुण भरते हैं, तो जो विशेष गुण की प्राप्ति हमें बाबा से होती है वो यही कि देही अभिमानी, बाबा कहते हैं बच्चे बहुत मीठे होते हैं और वो सबको सुख देते हैं। और ऐसे ही निश्चिंत रहना, त्याग तपस्या और सेवा के गुण, ये भी विशेष गुण है। हम बेफिक्र बादशाह हैं क्योंकि हमने अपने सारे फिक्र भगवान को दे दिए। हम अभी ट्रस्टी हैं, हमने सब कुछ तेरा कर दिया, और इसीलिए हमारे लिए बेफिक्र निश्चिंत रहना सहज होता है। तो देवताओं में ये निश्चिंतता का गुण, क्योंकि उन्हें कोई भी बात की चिंता नहीं है, जैसे कहा सर्व प्राप्ति संपन्न है, तो भविष्य की कोई चिंता हो किसी भी बात को लेकर के उसका प्रश्न ही नहीं उठता है। तो वर्तमान में हम इन सब गुणों का अनुभव करते हैं। इसे त्याग के लिए भी बाबा कहते हैं भाग्य बनाने वाला गुण है, और त्याग भी हमारा बेहद का त्याग है। कोई सन्यासियों की तरह या महात्माओं की तरह सिर्फ स्थूल त्याग की बात नहीं, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति, यानी देह सहित देह के सर्व संबंध, देह के पदार्थ का वृत्ति से त्याग। स्थूल में भले ही हम उनसे प्रयोग करते हैं लेकिन अनासक्त वृत्ति से उसको प्रयोग करना, और त्याग ही हमें पद्मा पदम भाग्यवान बनाता है, पद्मा पदम पति बनाने वाला है। और सेवा का गुण त्याग से जुड़ा हुआ है, तो जितना हम तन मन धन से सेवा करते हैं वो भी हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हम जो भी ईश्वर अर्थ सफल करते हैं, तन मन धन सफल करते हैं, बाबा कहता है वो हमारी अविनाशी बैंक में भी जमा हो जाता है। वर्तमान तो हमें प्राप्ति होती ही है, वर्तमान हमें उससे वो खुशी और शक्ति मिलती है, लेकिन भविष्य 21 जन्मों के लिए हम अपना भाग्य जमा करते हैं। तो इन सब गुणों को जितना हम अपने जीवन में धारण करते जाएंगे, और उसके लिए हर दिन हम एक गुण की विशेष स्मृति रखें। हम सबको पता होता है कि कौन सी गुण की विशेषता है मेरे अंदर, जैसे हम गुण ग्राहकता की बात करते हैं, वो भी एक गुण है। तो हमारे गुणों का ज्ञान और अवगुणों का ज्ञान हमें मालूम होता है कि मेरी कौन सी कमियां हैं जिससे मुझे अभी उसे पुरुषार्थ से उसे आगे बढ़ना है। और दूसरों के प्रति भी हम जब संपर्क में आए तो उनके भी गुणों पर ही हमारी नजर जाए, उनकी भी कुछ ना कुछ कमियां तो हैं, लेकिन कमियों पर नजर नहीं जानी चाहिए। तो अपने गुणों को हमें बढ़ाते रहना है, अपनी चेकिंग, जैसे बाबा कहता है रोज अपना चार्ट देखो, चेकिंग करो और फिर चेंज कर सकते हैं, चेकिंग करेंगे तो चेंज कर सकेंगे। और दूसरों के प्रति भी गुणग्राही दृष्टि है तो सदा उनके प्रति हमारा स्नेह सम्मान सहयोग बना रहता है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ करके, क्योंकि हमें पता है समय कम है, सर्वगुण संपन्न बनेंगे तभी सत्युग में आने के अधिकारी बनेंगे। अगर एक दो गुण भी कम रह गए, जैसे बाबा कहते हैं दो कलाएं कम रह गई तो चंद्रवंशी हो जाएंगे। तो अपने सब गुणों की चेकिंग करके जो बाबा हमें गुण कहते हैं, वो सर्वगुण मुझ में कितना आ गए हैं, अगर कुछ कमी है तो जो भी बाबा ने हमें विधियां बताई हैं उन विधियों से हम सर्वगुण संपन्न बने। ओम शांति।